कहने पर मृत्यु के पास पहुंचता है, और जब मृत्यु के घर पर पहुंचता है तो घर पर मृत्यु नहीं होता, यमराज नहीं होते हैं, बाहर अपने ड्यूटी करने गए होते हैं, और वो 3 रात तक भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर बैठा रहता है, क्योंकि जब तक वो यमराज से मिल ना ले तब तक वो कुछ खाना पीना कुछ नहीं करने वाला। यमराज की पत्नी परेशान है कि मेरे घर में कोई ब्राह्मण बच्चा, ज्ञानी बच्चा भूखा प्यासा पड़ा है, तो उसको बड़ा बुरा लगा। यमराज के आने पर उसने खूब फटकार लगाई कि जब मर्जी तब भाग जाते हो काम के नाम लेकर, पर घर में जो समस्याएं वो मुझे झेलनी पड़ती है। 3 दिन से ये विपत्ति पड़ी हुई है, ये लड़का हिलता नहीं है, कहता है जब तक उनसे मिलूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, घर में अतिथि भूखा प्यासा हो तो बड़ा अनिष्ट होता है गृहस्थ को, अतिथि का अपमान हो तो गृहस्थ को अनिष्ट होता है, जल्दी जाइए उनको प्रसन्न करिए। यमराज नचिकेता के पास दरवाजे पर जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप जो 3 रात तक भूखे प्यासे रहे, हमें बड़ा अंदर से और बाहर से अनिष्ट का बोध होता है, बड़ा सारा अशुभ होने वाला है, आप प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूं। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि जब व्यक्ति दुनिया में हर व्यक्ति मौत से भागने की कोशिश करता है, और क्योंकि हम मौत से भागने की कोशिश करते हैं इसलिए हर पल किसी ना किसी रूप में मरते रहते हैं, मरते मरते बचते हैं। दुनिया जो तनाव है, टेंशन है, उसका मूल कारण यही है कि मुझे कुछ हो ना जाए या मेरे प्रियजनों को कुछ हो ना जाए, और मौत का कोई ठिकाना नहीं, कहां किस वक्त कहां गला पकड़ के उठा के ले जाए। पर जो हिम्मतवार लोग होते हैं, जिनमें हिम्मत होता है, साहस होते हैं, जो मौत को ललकारते हैं, मौत उनसे दूर रहता है। अरे वैसे भी अपनी जिंदगी का बड़ा फलसफा है। स्वामी विवेकानंद अपने जीवनी में लिखते हैं, वो किसी गांव के बीच में से गुजर रहे थे तो बंदर उनके पीछे पड़ गए। बंदरों को देखे तो स्वामी जी दौड़ने लगे बंदरों से बचने के लिए, जितना आगे दौड़े बंदर उतने पीछे दौड़ने लगे। पास में बैठा हुआ एक बच्चा हंसने लगा, इस बाबा दौड़ते हैं, बाबा ने पूछा क्यों हंसते हो, बोले आप दौड़ते क्यों हो ना, बंदर से डर के दौड़ता हूं, बोले जितना दौड़ोगे बंदर उतना डराएगा, बोले क्या करूं, बोले खड़े हो जाओ। सचमुच जैसे ही विवेकानंद खड़े हुए, जहां खड़े हुए बंदर वहीं खड़ा हो गया, बोले उसके तरह सामना करके देखो। बंदर को विवेकानंद ने देखा तो बंदर भी चुप हो गया। जब तक विवेकानंद देखते रहे, बंदर देखता रहा, इधर उधर झांकता रहा और पीछे मुड़ के भाग गया। विवेकानंद ने लिखा, उस बच्चे को तो पता नहीं, पर उस बच्चे की उस बात से मुझे जिंदगी में आगे की मेरी जिंदगी कैसे होगी, उसका राह मुझे मिल गया, उसका रास्ता मुझे मिल गया। जहां जहां तुम डरोगे वहां वहां तुम सचमुच डरते रहोगे, वो तुम्हें डराता रहेगा। जहां तुम डरना छोड़ दो तो डर खुद तुमसे भाग जाएगा। जिंदगी में हम कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर डरे रहे तो जिंदगी भर वो डराता रहेगा, और अगर आप निडर हो जाए तो डराने वाला खुद डर जाता है। मृत्यु और हमारे बीच में यही संबंध होता है। दुनिया में जितने साहसी वीरों की कहानियां आप पढ़ते हैं, वीर का मतलब नहीं कि जो युद्ध के मैदान में गोली खाता है, वीर वो है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बड़े दार्शनिक हैं, जो बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े धनी हैं, जो देश चलाते हैं, किसी भी मामले में जो हिम्मत करके आगे आते हैं, जो हमारे में नहीं होता है। हमें लगता है ये मुझसे नहीं होगा, और जिन लोगों को लगा कि मुझसे हो सकता है, मैं समुद्र के गहराई तक जा सकता हूं, मैं महाकाश में महीनों रह सकता हूं। वो करके दिखाया। जो हमारे लिए पौराणिक कथाएं हैं, उन लोगों ने उसको सच करके दिखा। वो कौन है जिन्होंने डरना छोड़ दिया, और खास करके मौत से जो डरना छोड़ दिया। तभी नचिकेता मौत से डरा नहीं, मौत के पास जाता है तो मौत खुद नमस्ते करने आता है, सत्कार करता है। आप तीन दिन भूखे प्यासे हो, तीन रात तक भूखे प्यासे हो, आपने कुछ नहीं खाया, उपवास रखा है। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए तीन वर देने को तैयार हूं। आप अपनी इच्छा से कोई भी वर मांगिए, मैं उसको पूरा करूंगा, जिससे कि आप प्रसन्न होंगे। और मेरा जो अशुभ हुआ तीन दिन तक मेरे घर में कोई भूखा प्यासा रहने से, जो मुझे पाप लगा उस पाप से मैं मुक्ति पाऊंगा। दो तीन चीजें इसमें बता करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो तीन दिन का उपवास रहना और यम का वर देना, इसके हमारे संस्कृति से बड़ा रिलेशन है। प्राचीन काल में जब बच्चा गुरुकुल में जाता था, मां बाप जब वो 7-8 साल का हो जाता था, उपनयन संस्कार कराने आचार्य के पास ले जाते थे। जो यज्ञोपवीत संस्कार है, जिसको जनेऊ संस्कार कहते हैं, उसका दूसरा नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन का पास मतलब होता है पास ले जाना। किसके पास ले जाना? गुरु के पास ले जाना। गुरु उपनयन संस्कार कराता है, जनेऊ पहनाता है। जनेऊ क्या है? वो आइडेंटिटी कार्ड है कि ये बच्चा ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का मतलब विद्यार्थी है, पढ़ने वाला है। इसीलिए जिनमें जनेऊ नहीं होता था वो शूद्र कहलाते थे, अनपढ़ कहलाते थे। गुरु उसको तीन रात तक अपने पास रखता था। उस नए बच्चे को जो पहली बार जाता है गुरुकुल को, उसको तीन रात तक अपने पास रखता था। अथर्ववेद में मंत्र आता है कि आचार्यो ब्रह्मचारिणम गर्भमंतः कुरुते। आचार्य उस ब्रह्मचारी को जो पहली बार गुरुकुल में आया, तीन दिन तक अपने गर्भ में धारण करता है। गर्भ में धारण करता है मतलब अपने पास रखता है। वो तीन दिन के बाद फैसला करता है कि इस बच्चे को जो जनेऊ उपनयन संस्कार कराना है, मतलब गुरुकुल में एडमिशन कराना है, वो किस तरह की पढ़ाई पढ़ेगा, किस तरह के काम करेगा, किस तरह की शिक्षा पाएगा। वो तीन दिन क्या था? गुरु को ये परखना होता है इस बच्चे में क्या योग्यताएं हैं, क्या सामर्थ्य हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या रुचि है, किसके किस रास्ते पर ये जा सकता है, किन चीजों में इसको अच्छा लगता है, इसकी मानसिकता कैसी है, इसकी मेंटेलिटी कैसी है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, मेंटल स्ट्रेंथ कितना है, उसको अध्ययन करता है। उसके हिसाब से आचार्य निर्णय करता है ये कितने का लायक है। तीन दिन तक उपवास रहने पर नचिकेता को क्या क्या मिला, आप कितने महीनों में सुनेंगे। उपवास का अर्थ होता है, जनरली हमारे माताएं उपवास रखती हैं त्योहारों में। वो एक तो वो रखते हैं उसमें पति की शुभ कामना के लिए, कौन सा त्योहार होता है, करवा चौथ में, और भी बहुत सारे माताएं जो थोड़ी धार्मिक होती हैं और भी रखते रहते हैं। मुझे नहीं पता उस उपवास से क्या हासिल होता है। और भारत में ज्यादातर जो इस तरह की माताएं होती हैं उनको माइग्रेन से लेकर के दुनिया भर के प्रॉब्लम होते हैं जो उपवास ज्यादा रखते हैं। पति का उम्र बढ़ता है कि नहीं बढ़ता पता नहीं, पत्नी ज्यादा बीमार जरूर रहती है। क्योंकि उसका कारण है, हमारे हर धर्म के जितने सारे उपाय थे वो इतने विकृत रूप में हम अपनाते हैं। उपवास का अर्थ होता है उप मतलब नजदीक, वास मतलब बैठना। किसके पास नजदीक बैठोगे? दिन भर, हफ्ते भर, महीनों भर, साल भर हम अपने अपनी जीविका के लिए व्यस्त रहते हैं, काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, कभी भगवान को याद करने में समय दे पाते नहीं दे पाते। तो कभी मौका मिला, हमारे पूर्वजों ने अलग अलग दिन निश्चित कर दिया, कम से कम इन दिनों तो कहीं जाना नहीं, ईश्वर की भक्ति करना। जब भक्ति में आदमी डूबता है, भक्ति छोड़िए, भक्ति हमसे होती नहीं होती है। जब आप किसी खास तरह के सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, या फुटबॉल मैच देख रहे हैं, या क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या ऐसी किसी बात में मशगूल है, किसी की बुराई करने में बैठे हैं, तो आपको टाइम पता नहीं चलता। बुराई करना भी बड़ा एंटरटेनमेंट होता है, खास करके पड़ोसियों की। पता ही नहीं चलता खाने का समय कब बीत गया, शाम कब हो गई। आपकी मनपसंद लड़कों के लिए हमारे भारत में क्रिकेट मैच अगर चलो, और खास करके इंडिया पाकिस्तान हो, तो फिर कुछ याद नहीं रहता है। यहां का पता नहीं, यहां तो बहुत सारे खेल है, यहां तो हजारों खेल लोग बच्चे खेलते हैं, और किस खेल में किसको इंटरेस्ट है। माताएं दोपहर को वो सॉप ओपेरा देखते हैं, सास बहू की नाटक देखते हैं, कभी कभी सीन बड़ा दमदार चल रहा होता है तो डूब जाते हैं, पता ही नहीं चलता दाल उबल के पानी सूख चुका है कुकर में, हुईसिल कब दे चुका होता है, पता ही नहीं चलता। जब किसी चीज में हम डूब जाते हैं तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। बच्चा जो परीक्षा के समय मन लगा के पढ़ता है, मन लगा के साल भर तो जबरदस्ती पढ़ता है, तो उस समय उसको पता ही नहीं चलता मम्मा अगर बुलाएगी भी खाना खाओ, अभी नहीं, अभी तुम बोलो मत, मेरा ध्यान बट जाता है। जब व्यक्ति किसी चीज में डूब जाता है तो बहुत कुछ भूल जाता है। उपवास शुरू हुआ इसी से कि लोग जब अपने आप को ईश्वर की भक्ति में, ध्यान में, प्रार्थना में डूब कोशिश करते थे डूबने के लिए, तो खाना पीना बनाना ये सब छूट जाता था। अब बीच में ईश्वर कहीं नहीं है, अब भगवान उपवास और मेरे बीच में भगवान कहीं नहीं है। पूरे दिन भर में उपवास रखता हूं या रखती हूं, उपवास मतलब नजदीक बैठना, पर किसकी नजदीक में बैठता हूं मन में, शाम कब होगा और जो हलवा पूरी शाम को बने होंगे कब खाऊंगा या खाऊंगी। गौरवा चौथ में भी ये थोड़े कि पति नजर में आता, पति सामने आता है, वो चांद सामने आता है कि कब चांद दिखे मैं खाना खाऊं। उसमें बेचैनी ज्यादा होती है, शांति कम मिलती है, क्योंकि मन और कहीं नहीं लगा। जब मन और कहीं नहीं लगा, आप वैसे काम में व्यस्त हैं, दो दिन तीन दिन नहीं खाते, आपको मौका नहीं मिलता खाने के लिए। जब आप बहुत व्यस्त हैं अपने घर में, शादी ब्याह में, या किसी आर्य समाज के फंक्शन में, या आपके ऑफिस में कोई काम में, आप जब डूबे हो, आपको पता ही नहीं चलता खाना खाया नहीं खाया, खाया तो चलो थोड़ा सा खा लिया भागे, पर जिस दिन आपने सोचा कि आज मुझे नहीं खाना है, आधे घंटा हुआ ही नहीं होगा भूख लगने लग जाएगा। वैसे हो सकता है रोज आप 9:30 बजे नाश्ता करते हो, 10 बजे नाश्ता करते हो, जिस दिन उपवास रखना है अगर उस दिन नींद 6 बजे खुल गया, 6:30 बजे भूख लगेगा। क्यों? क्योंकि मन उस दिन खाने पर होता है, जिस चीज में मन होता है उसी को पाने की चाहत होती है। बच्चा, आपका बच्चा कभी कभी 2-4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता है, वो मस्ती में रहता है कोई बात नहीं, पर आपने कहा 3 घंटे तक आज तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना, 10 मिनट के बाद बच्चे के सर दर्द शुरू होंगे, बच्चे के पैर में समस्याएं शुरू हो जाएगी, बच्चे की इतनी पढ़ाई कोई बुक छूट गया दोस्त के वहां वो याद आ जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ वो पैर कुचल के दुनिया भर के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके सामने वो 3 घंटे के लिए सिर्फ बाहर जाना ही उद्देश्य हुआ। मतलब जिस चीज को आप जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे वो उससे आप छूट नहीं पाएंगे, वो आपको ज्यादा तंग करता है। उपवास का उद्देश्य था कि हम उस ईश्वर के नजदीक हो, नजदीक हो मतलब दिल में एहसास करें, शरीर से थोड़े ईश्वर के नजदीक हो, ईश्वर तो आपके अंदर है, बाहर है, हर कण कण में है, उसको एहसास करना, उसमें डूबे रहना। जब हम उपवास करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में होते हैं, तो उसके अलग तरह की शांति मिलती है। वैसे भूखा रहने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप ईश्वर को याद नहीं करते तो भी भूखा रहना चाहिए, कम से कम 15 दिन में तो एक बार उपवास रहना चाहिए, नहीं खाना चाहिए दिन भर कम से कम, या हल्का खाना चाहिए जिनको भूख बर्दाश्त नहीं होता है। उससे क्या होता है, पेट साफ होता है। हमारे उपवास जब बढ़ता जाता है, जब हमारे खाना हम छोड़ते जाते हैं, अंदर की शुद्धियां होती हैं, जितने पुराने जहरीले चीजें पाकस्थली में आपके पेट में होते हैं वो साफ होते जाते हैं। अगर उस भूखे रहने के साथ साथ आपकी भक्ति जुड़ी हुई है तो आपका मन साफ होता जाता है। उपवास रहने से, खाना ना खाने से शरीर साफ होता है और ईश्वर में भक्ति लगाने से मन साफ होता है। उपवास की परंपरा क्यों बनी थी, कि व्यक्ति शुद्ध बने, शरीर से भी मन से भी हर तरह से वो शुद्ध बने, प्योर बने। ये शुद्धिकरण प्रक्रिया है, अंदर और बाहर की शुद्धिकरण प्रक्रिया है। जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो फिर मैं जिस काम के करना चाहता हूं उस काम के लायक बनूंगा। खास करके आध्यात्मिक जगत में, धार्मिक जगत में उपवास का क्यों महत्व है, कि कोई भी धर्म कार्य पर करने से पहले आपको उपवास रहना चाहिए, ऐसा क्यों है? यहां तक कि शादी और जो जनेऊ संस्कार वगैरह में भी नियम है कि 12 घंटे से पहले आपको खाना नहीं खाना चाहिए। मैं आजकल की बात नहीं कह रहा हूं, मैं नियम की बात कर रहा हूं। क्यों? हमारे यहां शादी भी एक पवित्र चीज माना जाता है, उसको उस पवित्रता से स्वीकार करना होता है। इसलिए लड़के लड़की खाना नहीं, उपवास रखते हैं उस दिन सुबह से, जब तक शादी वो विवाह का यज्ञ नहीं हो जाता तब तक वो भोजन नहीं करते। ये शुद्धिकरण है। ब्रह्मचारी का जब जनेऊ संस्कार होता है वो उपवास रखता है, मतलब गुरुकुल में पढ़ने के लिए, अंदर और बाहर से शुद्ध करने के लिए। तो नचिकेता उपवास किया, ये कठ ऋषि की कहानी है, पर उस कहानी का रहस्य है कि आपको जब कोई ज्ञान प्राप्त करना हो, कोई बहुत कुछ पाना हो, तो आपको उसकी योग्यता बनानी पड़ेगी अंदर और शरीर और मन से, और उसका परिणाम स्वरूप यमराज उसे वर देते हैं। जब आपकी शुद्ध होते हैं आपका शरीर और मन से, तब आप कुछ पाने लायक होते हैं। जब आपका घड़ा पहले ही कचड़ों से भरा हो, वो पानी भी रखने लायक नहीं है, और अगर घड़ा साफ हो, आपने उसको शुद्ध कराया, उसके अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली है, कोरा है, तो आप उसमें पानी भी रख सकते हैं, खीर भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें रख सकते हैं, पर उसके लिए वो घड़ा को खाली होना, साफ होना जरूरी है। अपने को साफ करने का नाम उपवास होता है, मन से या शरीर से। नचिकेता के तीन उपवास के लिए यमराज तीन वर देते हैं। पहला वर, तिस्रो रात्रि तवात् शीर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। जो तुम मेरे घर में तीन दिन तक भूखे प्यासे रहे, हे अतिथि, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुम तीन वर मांगो। तो नचिकेता ने क्या वर मांगा देखेंगे। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। प्रथमं वरं वृणे, पहला वर मांगता हूं। पहला वर नचिकेता ने मांगा, वरों को देखिए कैसा है। मेरा बाप बड़ा खड़ूस है, गुस्सेल है, हर बात पर चिढ़ता है। आपने इसकी नमूना भी देखी, नचिकेता ने जब पूछा पापा मुझे किसको दोगे किसको दोगे, तो गुस्से में आकर बोला तुझे मौत को दूंगा। तो बाजश्रवास थोड़ा चिड़चिड़े किस्म के आदमी थे। वैसे ध्यान रखिए, जो ज्यादातर ये मेरा अनुभव है, आपका नहीं हो सकता है, जो धार्मिक तथाकथित सो कॉल्ड धार्मिक लोग होते हैं वो कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े होते हैं। ऐसा क्यों है ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब अंदर भक्ति ना हो, ऊपर हिपोक्रेसी हो दिखाने की हो, तो वो सब चीजें आपको आपके मन को झंझोरता है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। घमंड बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। बाजश्रवा बड़ा यज्ञ करता था, प्रतिदिन यज्ञ करता था, दान पुण्य करता था, पर चिड़चिड़ा था, मतलब अंदर से शुद्ध नहीं था। मेरा पिता बड़े चिड़चिड़े हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, मुझे देखते कि पचासों सुना देते हैं। जब मैं यहां से वापस घर जाऊं, बस ये करो कि मेरे पिताजी शांत हो जाए, उनको रात को नींद भी कम आती है, स्वाभाविक है। उस दिन हमने चर्चा की थी, हम जितने कुटिल होंगे, कुटिल समझते हैं कॉम्प्लिकेटेड, कुछ बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हंसते हैं अंदर गाली देते हैं, गाली देते हैं अंदर हंसते हैं, ये जो जैसे ये आजकल वो ट्रेनिंग, फिर कुटिलता भी आजकल ये सिविलाइजेशन की एक पार्ट बन गई, ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने कस्टमर से कैसे बिहेव करोगे। अंदर उसको गाली देने को मन करता है, पर तब भी दांत दिखाना, हंसना, मुस्कुराना, सामान बेचना, ये ट्रेनिंग मिलती है। फिर होता क्या है, ऐसा देखा गया जो भी व्यक्ति, ज्यादातर जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं या जो सेल्समैन होते हैं, उनको बहुत कम उम्र में ये सरदर्द से लेकर के ब्लड प्रेशर तक बीमारी होती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो हिपोक्रेसी ठीक है यार, मुस्कुराना, जबरदस्ती हंसना, जबरदस्ती कोई चीज कराना, ये आपके माइंड और बॉडी को पूरी तरह झकझोर देता है। सिविलाइजेशन बहुत कुछ हमें, हमारे से डिमांड करता है, हमसे छीनता है, ये जो नकलीपन है। तो इसलिए जो कुटिल लोग होते हैं, जिनका मन और विचार, जिनका करना और सोचना दो अलग अलग होता है, ऐसे लोग बेचैनी, हमेशा बेचैनी में रहते हैं, उनको कम नींद आता है, वो परेशान रहते हैं जिंदगी से, दूसरों से शिकायती होते हैं, सबके बारे में शिकायत है, अंदर से बाहर से सब जगह परेशान रहते हैं। जो कुछ मैं सुना रहा हूं उपनिषद के बारे में, इसमें से हम भी थोड़े बहुत अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुने। ये बेसिक चीजें हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। मेरे पिताजी रात को ठीक से सो नहीं पाते, तो कुछ ऐसा वर दो कि मेरे पिताजी को रात को नींद आए, जरा शांत हो जाए, अच्छे विचार वाला बने, और खास करके जब मैं वापस घर जाऊं, फिर वो मेरे से थोड़ा तो ढंग से बात करे, वो हमेशा चिड़चिड़ा करके बात ना करे। अगर शायद कोई ऐसा भगवान या देवता हमें वर मांग बोलता कि वर मांगो, पता नहीं हम क्या मांगते। नचिकेता ने ये मांगा प्रथम वर। यमराज ने कहा ठीक है, जब तुम यहां से वापस जाओगे, तुम्हें तुम्हारे पिताजी बड़े शांत नजर आएंगे, रात को पूरी रात 8 घंटे सोने लायक बनेंगे। अब वैसे नींद अच्छी आएगी तो सुबह मूड फ्रेश होता है, तो वैसे भी गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होता है। जिनको नींद नहीं आती वो भी थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, इसलिए नींद पूरी करनी जरूरी है। नींद अगर नहीं आती है तो मेहनत करना जरूरी है। मेहनत नहीं कर सकते तो खूब एक्सरसाइज करिए, कम से कम शरीर थकेगा तो नींद जरूर आएगी। हमारी समस्या है कि हमारा शरीर थकता नहीं है, इसलिए नींद कम आता है। बच्चों की क्यों समस्या नहीं होती है? आप कितना भी रोको, बाहर भी ना जाए, घर में भी उछल कूद करेंगे, जब सुलाओ 10 मिनट में सो जाएंगे और मन उनका फ्रेश रहता है। तो तुम्हारे पिताजी शांत मिलेंगे और घर जाओगे तुम्हें अच्छी तरह पेश आएंगे। पहला वर यह है। अब बोलो दूसरा वर क्या मांगते हो? तो नचिकेता दूसरा वर मांगता है, स्वर्गे लोके न भयम् किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा शननया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। हमने सुना है कि स्वर्ग में कोई डर नहीं होता है, वहां बुढ़ापा से कोई डरता नहीं है, भूख और प्यास वहां तंग नहीं करते हैं, व्यक्ति शोक से दुख से ऊपर होता है। सत्वमग्निम स्वर्गमध्ये मृत्यो प्रब्रूहित्वं श्रद्धधानाय मह्यं स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। मुझे पता चला कि तुम सब कुछ जानते हो, उस स्वर्ग का जो साधन है वो यज्ञ का अग्नि है। मुझे दूसरे वर्ष तुमसे ये जानना है कि ये यज्ञ क्या चीज है, कैसे होता है, उसकी विधि क्या है, उसका नियम क्या है, जिस यज्ञ से हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। दो चार चीजें इसमें समझना है, फिर आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग का साधन यज्ञ होता है। स्वर्ग मतलब सुख। यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ होता है कोई भी काम जब खुद के लिए ना होकर, शब्द को थोड़ा बदल दूं, कोई भी काम जो केवल खुद के लिए ना होकर सबके लिए होता है वो यज्ञ होता है। मैंने जो चेंज किया वो ध्यान दीजिए। इसका अर्थ नहीं कि खुद के लिए नहीं करना, केवल खुद के लिए ना होकर, खुद के लिए के साथ साथ सबको साथ जब हम कोई काम करते हैं वो यज्ञ होता है। जो यज्ञ में आप आहुतियां डालते हैं घी और सामग्री की, 200 ग्राम घी आप डालते हैं, अगर 200 ग्राम घी अगर आप खाएंगे तो आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगा। अगर घी खा करके आप एक्सरसाइज और व्यायाम करते हैं नहीं तो फिर फैट बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, इसीलिए आप अवॉइड करते हो। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो रोज आधा किलो घी पी सकते हैं, और भारत में हरियाणा पंजाब वगैरह में कच्चा बाल्टी उठा के पी लेते हैं घी, अभी भी पीते हैं, पहलवानी करते हैं 2-4 घंटे। 60-65 साल के लोग 200-250 ग्राम घी तो रोज एक टाइम में पी जाते हैं कच्चा, और आपको घी देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसका कारण है, कारण है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते तो उसको हजम नहीं कर पाते, फिर वो फिर प्रॉब्लम शुरू करता है। मान लीजिए हम एक्सरसाइज करते हैं और हम घी खाते हैं तो मेरे अंदर ताकत बढ़ेगी, ताशक्ति बढ़ेगी, पर अगर मैं उस घी से हवन करता हूं, और हर घर में ये हवन होता है उस घी के साथ विशेष सामग्री वगैरह डाल करके, तो पूरे गांव में, पूरे कॉलोनी में, पूरे शहर में, पूरे देश में वातावरण शुद्ध होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, यज्ञ वृष्टि बारिश समय पर होती है, वनस्पतियां हरे भरे रहते हैं, घर में वह पवित्रता बनती है। जिस चीज से मुझे अकेले को फायदा होता है वो सबको हुआ, सबके साथ साथ मुझे भी फायदा हुआ। अगर मेरे शहर में बीमारी कम होगी तो मुझे भी बीमारी कम होगी। अगर आजकल कैंसर की बीमारी बढ़ रही है तो इसके लिए नहीं कि पड़ोसी के घर में बढ़ रहा है, मुझे भी कभी भी हो सकता है। अगर हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो इसलिए नहीं कि पड़ोसी को होता है तो मुझे भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये बीमारियां सबके लिए आ चुकी है, ये नई नई बीमारियां आ जाती है क्योंकि वातावरण में बदलाव आता है। वो वातावरण जरूरी नहीं कि बाहरी वातावरण, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। जब एक अच्छा समाज बनता है तो मैं भी अपने आप अच्छा होता हूं। क्यों हिंदुस्तानी पढ़े लिखे लोग अमेरिका की ओर दौड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ओर दौड़ते हैं, न्यूजीलैंड यूरोप की ओर दौड़ते हैं? उनको लगता है जो मैं कमाता हूं उसका सही यूज यहां हो सकता है, यहां सही माहौल मिलता है, उनको बढ़ने का माहौल मिलता है, उनकी विद्या को कोई समझने वाला मिलता है, इनको घर साफ सफाई वाला मिलता है, उनके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलता है। ये समाज आपने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया, उस समाज का उपयोग हम करते हैं। अगर यही स्थिति हमारे देश में होता तो जितने लोग यहां है भारतीय, 1% भी नहीं होते। जब सही समाज बनता है तो व्यक्ति भी अपने आप सही हो जाता है। अच्छा, एक समृद्ध समाज हो तो मैं भी समृद्ध होता हूं, समृद्ध समाज में रह करके। वो किसान भी समृद्ध होता है, दुकानदार भी समृद्ध होता है, वो रिक्शा चलाने वाला भी समृद्ध होता है। जब समाज गरीब हो तो पढ़ा लिखा आदमी भी गरीब होता है। आज भी भारत में वो कॉलेजों में इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे 10-10, 12-12 हजार रुपए के लिए तरस जाते हैं नौकरी के लिए। क्यों? ऐसा समाज नहीं है, ऐसा हमने बनाया नहीं है। तो यज्ञ का अर्थ होता है जिस कार्य से मेरे साथ साथ सबकी उन्नति हो, वो यज्ञ है। दुनिया में मेरे अंदर से लेकर बाहर तक, ईश्वर की सृष्टि से लेकर मेरी सृष्टि तक, हर जगह यज्ञ चलता है। यज्ञ का उद्देश्य है सामूहिक उन्नति, सामूहिक विकास। उस समूह के साथ मेरा विकास होगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर आगे बढ़ता हूं। अगर मेरा परिवार में सब पढ़े लिखे हो, मेरे घर में अच्छा धन संपत्ति हो, तो मेरे बच्चे अपने आप पढ़े लिखे होंगे और धनी होंगे, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गरीब घर के बच्चे को धन जुटाने में जितना मुश्किल है, एक धनी घर के बच्चे के लिए इतना मुश्किल नहीं। पढ़े लिखे व्यक्ति का बच्चा जितना आसानी से पढ़ाई लिखाई कर सकता है, जिसके घर में 5 पीढ़ी से कोई पढ़ा नहीं है उसके बच्चे को आसान नहीं है। इसीलिए भारत में रिजर्वेशन है, वो क्यों है बाद में चर्चा करेंगे, पर उद्देश्य यही है। इसी का नाम है यज्ञ। जब आपको सही परिवार मिलता है तो आप अपने आप लायक बन जाते हो, सही समाज मिलता है तो अपने आप लायक बन जाते हो। आप कोशिश करते हो, पर गलत परिवार में कोशिश करने पर भी सही फल नहीं मिलता, गलत समाज में कोशिश करने पर भी सही फल नहीं मिलता। यज्ञ का अर्थ है सामूहिक विकास करना, जिसके साथ साथ मेरा भी विकास हो। ये अग्निहोत्र भी उसी का प्रतीक है। यज्ञ का जो अग्नि है, जो इस यज्ञ की देवता है, वो हमारे अंदर की अग्नि है, बाहर की भी अग्नि है। मैं खुद अग्नि स्वरूप हूं, मेरी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितना आग शुद्ध है, मेरी आत्मा उतने ही प्रकाशक प्रकाश है जितना आग प्रकाश है। पर समस्या है कि आग में मैं कुछ डालता हूं हवन करने के लिए, मैं अपने अंदर के लिए बहुत कम कुछ करता हूं। जो लोग अंदर के लिए कुछ करते हैं उनकी आत्मा भी उतने ही उज्ज्वल, उतना ही प्रकाशमय, उतना ही आनंदमय होता है। मैं शाश्वत हूं, नित्य हूं, सनातन हूं, सो अग्नि की तरह। आप कहेंगे अग्नि कैसे शाश्वत है, जलते समय तो दिखता है, बाद में नहीं दिखता। बाद में नहीं दिखता मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप आग पैदा थोड़ी करते हो, आप सिर्फ एक माहौल पैदा करते हो जिसमें वो आग जो छुपा हुआ है वो दिखता है। माचिस जलाते हो, वो लकड़ियां घिसते हो, पत्थर घिसते हो, जिससे भी आप आग निकालते हो, आग तो है, अलग अलग रूप में है, बस आप उसको एक स्थूल रूप देते हो। हम अपने आत्मा को पैदा नहीं करते, हम तो आत्मवान है, पर जब हम अपने अंदर को शुद्ध करते हैं, खास माहौल बनाते हैं, तो मेरा आत्मा जो प्रकाश स्वरूप आनंद स्वरूप है वो खिल के सामने आता है, फिर मैं खिला खिला लगता हूं। अंदर हमेशा यज्ञ चलता है, आप खाना खाते हैं, देखिए आपके अंदर की जो जो मैटर है, जो जड़ है, आपके शरीर के अंग प्रत्यंग ये भी यज्ञ करते हैं। आप खाना खाते हो, बस आप खाना क्यों खाते हो, आपको स्वाद चाहिए, पर उस खाना अंदर जाता है, उसको पकाने वाला पकाता है, उसको ब्लड बनाने वाला ब्लड बनाता है, सर्कुलेशन करने वाले सर्कुलेशन करते हैं, आपके कौन से नस नाड़ियों में कितने रक्त जाना है वो हो जाता है, कि रक्त से आपको एनर्जी चाहिए, आपको शरीर को चाहने वाले अलग अलग विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जो कुछ चाहिए वो अंदर का मैकेनिज्म में सब बना देता है, आपने डाला और वो अपने आप बन गया, तभी आप स्वस्थ हो। आप कुछ ज्ञान प्राप्त करते हो, ऐसा नहीं कि ज्ञान लिया और दिमाग में रह गया, ज्ञान जाते ही आपके शरीर में हलचल मच गया, आपको जो अज्ञान था वो मिट गया, जो करेक्शन करना था आप करेक्शन कर डाले, जिसको इंप्रूव करना था इंप्रूव किया, क्योंकि पहले पता नहीं था, पता लगते ही सब कुछ एक्टिविटीज बढ़ने लग गया। ये यज्ञ है, संसार के बाहर भी यज्ञ चलता है, हमारे बाहर भी, ये सूरज, ये आकाश, ये पानी, समुद्र, पेड़ पौधे, जंगल, सब यज्ञ तो करते हैं। आप एक बीज लगाते हो, पानी डालते हो, वो पेड़ बड़ा होकर के आपको फल देता है, छाया देता है, फूल देता है, सूरज रोशनी देता है, सब देते हैं, आपको अकेले नहीं देते हैं, सबको देते हैं, क्योंकि दुनिया सबके साथ चलता है। उस यज्ञ की विधि में दो तीन चीजें हैं, एक तो आप खास तरह के कुंड बनाते हैं, वो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, आजकल तो माचिस वगैरह लगा देते हैं, अब तो लाइटर भी आ गया, पहले समिधाओं को, इसको समिधा क्यों कहते हैं ये कहकर के बात समाप्त करूंगा, दो मिनट और लूंगा, लकड़ी को, जो यज्ञ की लकड़ी है इसको समिधा कहते हैं, और जिस पहले जमाने में लकड़ी को रगड़ करके आग निकालते थे, आप कहेंगे इसीलिए कि उन दिनों और कुछ होगा नहीं, इसीलिए नहीं, जिन दिनों आग की व्यवस्था थी तब भी यज्ञ करते समय लकड़ी रगड़ के आग निकालते थे, खास तरह की लकड़ी, इनको अरणी कहते हैं। जैसे दो लकड़ियों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होता है, वो खुद को प्रकाशित करता है, दुनिया को प्रकाशित करता है, और इसीलिए लकड़ी को समिधा कहते हैं। समिधा का अर्थ होता है अच्छी तरह जलना, प्रकाशित होना। अग्नि अपने आप, आग कोई आग की सत्ता है, पर आग कभी प्रकाश कर ही नहीं सकता जब उसको कोई सहारा ना मिले। लकड़ी हो तभी आग जल आग आग दिखेगा, बल्ब हो तभी वो एनर्जी लाइट के रूप में कन्वर्ट होगा, उसको कोई सहारा चाहिए। यह आत्मा शरीर के सहारे है, तो समिधा का अर्थ होता है लकड़ी जो जलने लायक है। अंदर के यज्ञ में भी हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये समिधाएं होती हैं, जब हम उनको जला सकते हैं तो हम भी अग्नि स्वरूप प्रकाशक हो सकते हैं, खुद को भी रोशनी कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं। हमारे अंदर की गंदगियां जब नष्ट हो जाता है तो फिर हम शुद्ध पवित्र होते हैं। जब मेरी अंदर की कमियां खत्म हो जाती है, बुराइयां खत्म हो जाता है, तो मेरे अंदर वो योग्यता आती है। जैसे जब आप पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, डिग्री मिलती है, वो डिग्री क्या है, आपकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, फिर उससे क्या होगा, आप कितना कमाएंगे उससे डिसाइड होगा, आप समाज में आपका क्या पोजीशन होगा उससे डिसाइड होता है, आप उसके योग्य बनते हैं। इसी तरह जब मेरे अंदर की शुद्धता होती है, मेरी गंदगियां, मेरी बुराइयां खत्म हो जाती है, तो मैं शुद्ध बनता हूं, तो मैं ईश्वर के पात्र, कृपा के पात्र बनता हूं, ईश्वर के पाने लायक बनता हूं। तो यज्ञ आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए पहला स्टेप है, पहला पदक्षेप है, प्राइमरी क्लास है। जैसे पहले दूसरी क्लास में आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी में साइंटिस्ट क्या, फिलोसोफर क्या, नेता क्या, आप कुछ नहीं बन सकते, हलवी चलाने लायक नहीं हो सकते। इसी तरह अध्यात्म में यज्ञ प्रथम सीढ़ी है, अपने आप को शुद्ध करने का, उस यज्ञ के साथ साथ खुद यज्ञ को एहसास करते हुए हुए खुद को शुद्ध करने के लिए। समय हो चुका है, आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे। ओम शांति।